आगे देखिए भाई, दहुम नूने ताकी दर आखिर फेले मुजारे सकीला व खफीफा चू इजरीबन ना व इजरीबन। याजदहुम हरूफ ज्यादत व आहश्त हरूफ अस्त इन व अन व मा व ला व मीन व काफ व बा व लाम। चहार आखिर दर हरूफ जर याद करदा शुद। भाई गुज़श्ता सबक में हमने हुरूफ़ गैर आमिला की फसल शुरू की थी और इन्होंने आपको बतलाया कि हुरूफ़ गैर आमिला जो हैं वो 16 किस्म पर हैं। भाई 16 किस्म पर, और इन्होंने मुख्तसर मुख्तसर तआरुफ सबका करवाया। भाई बस उनके नाम जिक्र करते चले जा रहे हैं और उनकी तादाद बतलाते जा रहे हैं। भाई इब्तिदाई किताब है, भाई यहां सिर्फ नहव का तारुफ करवाया जा रहा है, तो जितनी ज्यादा तफसील जिक्र की जाएगी वो तालिब इलम बेचारा इब्तिदाई तालिब इलम तशवीश में मुबतला हो जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा सबको याद रखना। दो चार जहीन होंगे वो तो कर लेंगे, लेकिन बाकी सब तलबा तो नहीं कर सकते। तो मैं भी मुख्तसर तकरीर करता जा रहा हूं, बस आप ये इनका तारुफ, इनका नाम और इनकी तादाद याद करते जाएं। बात समझ में आ गई कि कौन कौन सी किस्म के हरूफ हैं और इनके क्या क्या नाम हैं और ये किस मकसद के लिए आते हैं और इनकी तादाद क्या है। बस ये आप याद करते जाएं, बाकी तफसील इंशाअल्लाह अगली किताबों में आ जाएगी। भाई तहसील इलम का तरीका ये है, भाई शुरू से एकदम सारा कुछ नहीं बताया जाता। भाई शुरू में थोड़ी बातें जिक्र की जाती हैं, तालिब इलम उनको याद कर लेता है, फिर अगले दर्जे में जाता है फिर कुछ मजीद तफसील आ जाती है, फिर उससे अगले दर्जे में जाता है तो और ज्यादा तफसील आ जाती है, और इस तरह कदम ब कदम वो सीखता चला जाता है, बजाय इसके कि शुरू में ही उसको सारा कुछ बता दिया जाए। भाई वो बेचारा तो मुब्तदी तालिब इलम है, वो क्या याद करेगा। भाई तो लिहाजा इन्होंने मुख्तसर बयान किया, मैं भी मुख्तसर तकरीर करता जा रहा हूं, बस सिर्फ तारुफ करवा रहा हूं। और तो आपने इनके नाम याद रखने हैं, जो मुख्तसर बातें मैंने जिक्र कर दी वो याद रखें, और इनके जो तादाद हैं ये हरूफ वगैरह उनको याद रखें। भाई तो कल इन्होंने बताया कि हरूफ गैर आमिला वो 16 किस्म के हैं, उनमें से पहले बताया हरूफ तंबी हैं। मैंने बताया हरूफ तंबी वो हैं जो किसी दूसरे को मुतवज्जे करने के लिए, मुतनब्बेह करने के लिए, उसको बेदार करने के लिए कलाम के शुरू में जिक्र किए जाते हैं, ताकि कहीं वो गफलत में ना हो और कलाम उसके सामने कलाम जिक्र किया जाए और वो गफलत में हो और सुने ही ना। तो इसलिए हरूफ तंबी को शुरू में जिक्र किया जाता है, और ये तीन है भाई, अला अमा और हा। दूसरा हुरूफ ईजाब हैं भाई, जो किसी सवाल वगैरह के जवाब में जिक्र किए जाते हैं, और वो छह हैं, नाम बला अजल ई जैरी और इन्ना। और मैंने बतलाया था कि ये ई जो है इसके साथ कसम भी जिक्र की जाती है, ई वल्लाही भाई। और इनमें से बाकी सब का माना नाम की तरह है, अलबत्ता बला, बला का माना है क्यों नहीं, क्यों नहीं। तो ये सवाल अगर मनफी हो तो ये उसको मुस्बत में बदलकर उसका जवाब देता है, यानी उसकी नफी को खत्म करता है। सेवम हरूफ तफसीर, तीसरी किस्म जो थी हरूफ गैर आमिला की वह हरूफ तफसीर थी, और वह इन्होंने बतलाया कि दो हैं, ऐ और अन। इनके जरिए किसी चीज की तफसीर की जाती है, किसी चीज का माना बयान किया जाता है। भाई इनको इसलिए इनको क्या कहते हैं, हरूफ तफसीर कहते हैं। चौथी किस्म हरूफ मस्दरिया हैं, और वो तीन हैं, इन्होंने बतलाया मा अन और अन्ना। और ये मा और अन जुमला फेलिया पर दाखिल होते हैं, यानी फेल पर दाखिल होते हैं और उसको मस्दर के माना में कर देते हैं, और अन्ना जो है ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है और उसको मस्दर के माना में कर देता है। और ये वही अन्ना है जो आपने हरूफ मुशब्बा बिलफेल के अंदर पढ़ा था। भाई तो याद रखो, ये जो अन्ना है ये जब किसी कलाम पर दाखिल होता है किसी जुमले पर, तो फिर उसको मुफरत बना देता है, उसको मस्दर बना देता है, उसके अंदर बात पूरी होती ही नहीं। मसलन मैं आपसे कहता हूं अन्ना जैदन काइमुन, क्या तर्जमा जे हाँ कि जैद खड़ा है, नहीं भाई ये तो पूरा जुमला है, अन्ना जैदन काइमुन, इसका माना है कियामु जैदिन, जैद का कयाम। तो मैं किसी के अरब के सामने सारा दिन भी कहता रहूं, अन्ना जैदन काइमुन, तो इसका माना क्या है, कियामु जैद। गोया मैं यूं ही कह रहा हूं कियामु जैद, जैद का कयाम, जैद का कयाम, तो वो मुझे कहेगा भाई बात तो पूरी करें, जैद के कयाम को क्या हुआ भाई। तो ये अन्ना क्या करता है, जुमले को मुफरत के हुक्म में कर देता है, यानी मस्तर बना देता है। पांचवीं किस्म जो इन्होंने बतलाई वो हरूफ तहजीज हैं भाई। तहजीज का माना है उभारना, और ये चार हरूफ हैं, अल्ला, हल्ला, लौला और लौमा, और ये उभारने के लिए आते हैं। ये अगर मुजारे पर दाखिल हों, और अगर माजी पर दाखिल हों, तो फिर ये मलामत करने के लिए आते हैं। हल्ला जरबता जैदन, तूने क्यों जैद की पिटाई नहीं की, देखो माजी पर दाखिल हुआ तो ये मलामत के लिए है कि उसको मलामत किया जा रहा है मुखातब को कि उसने जैद की पिटाई क्यों नहीं की। अगली किस्म थी हुरूफ तवक्को, और वो सिर्फ एक ही हर्फ है और वो है कद भाई। और मैंने आपको बतलाया कि कद माजी पर भी दाखिल होता है और मुजारे पर भी। कद माजी पर दाखिल हो तो वो तहकीक का फायदा देता है, और इसी तरह माजी को हाल के करीब कर देता है। कद जाराबा जैदुन, कद जाराबा जैदुन, तहकीक जैद ने पिटाई की है। देखो इसको माजी को हाल के करीब कर दिया, मालूम हुआ अभी करीब के जमाने में उसने पिटाई की है। और मुजारे पर जब यह दाखिल होता है तो फिर यह तकलील का फायदा देता है। कद या जी उ जैदुन, कभी कभार जैद आता है, और फिर मुजारे में भी कभी यह तहकीक का भी फायदा देता है। हफ्तुम सातवीं किस्म, इन्होंने हरूफ इस्तेफाम जिक्र की और बतलाया था कि वह तीन हैं, मा, हमजा और हल। मैंने आपको बतलाया था कि यह हरूफ इस्तेफाम सिर्फ दो हैं, हमजा और हल। ये जो मा है यह इसम है भाई, ये इसम है, अलबत्ता यह भी इस्तेफाम के लिए इस्तेमाल होता है। हश्तुम हरूफ रदा, आठवीं किस्म जो इन्होंने जिक्र की वह हरूफ रदा है। रद उन, रद उन का माना है डांटना भाई, डांटना, मना करना, रोकना किसी चीज पर। मसलन किसी ने आपसे कहा जैद युब गेजू का, जैद आपसे बुगज रखता है, यानी आपसे नफरत करता है, उसके दिल में आपके बारे में कीना है भाई, तो आप जवाब में कहते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, यानी हरगिज ऐसी बात नहीं है, जैद मुझसे बुगज नहीं रखता। तो ये कल्ला है, ये रदा डांट के लिए भाई। और नीज ये हक्कन के माने में भी आया है, हक्कन का क्या माना, यकीनन और बेशक भाई। कल्ला सौफ तालमूना, यकीनन अन करीब तुम जान लोगे, तो कल्ला यहां हक्कन के माना में है भाई, यकीनन। और ये वही माना अदा करता है जो इन्ना अदा करता है, इन्ना जैसे कलाम में ताकीद और जोर पैदा कर देता है। और नौवीं किस्म जो पढ़ी थी आपने हरूफ गैर आमिला की, वो तनवीन थी भाई, तनवीन। और इन्होंने बतलाया कि तनवीन पांच किस्म पर है, एक तनवीन तमक्कुन है, एक तनवीन तनकीर है, एक तनवीन इवज है, एक तनवीन मुकाबला है, और एक तनवीन तरन्नुम है। तनवीन तमक्कुन वो है, इसी का दूसरा नाम तनवीन सर्फ भी है भाई, स्वाद के साथ तनवीन सर्फ। और ये मुनसरिफ को जुदा करती है गैर मुनसरिफ से, जिस लफ्ज़ पर तनवीन तमक्कुन आ जाए मालूम हुआ वो गैर मुनसरिफ नहीं है, ऐसा मुआरब है जो मुनसरिफ है भाई। जैसे जैदुन, जैदुन पर तनवीन आई, इस तनवीन ने क्या बताया कि जैद ऐसा मुआरब है जो कि मुनसरिफ है भाई। दूसरी किस्म थी तनवीन तनकीर भाई, जो नकेरा के पर आती है, नकेरा पर। और उमूमन तो लवा समझते हैं शायद ये रजुलुन वगैरह पर जो तनवीन आई ये तनकीर वाली तनवीन है, लेकिन ये तनकीर वाली तनवीन नहीं, तनकीर वाली तनवीन जो नकेरा पर आती है या नकेरा बनाने के लिए आती है वो सिर्फ इसमें फेल में आती है। किसमें? जैसे इन्होंने जिक्र किया सह भाई, किसी को खामोश करवाना हो कि अभी खामोश हो जाओ, तो अरबी में कहते हैं सह भाई, स्वाद और हा सह। और कभी इसी को तनवीन के साथ जिक्र करते हैं सहिन सहिन, तो ये जो तनवीन के साथ है ये तनवीन नकेरा के लिए है, और नकेरा में उमूम होता है, मालूम हुआ इसका माना क्या है सहिन, किसी वक्त तो चुप हो जाओ, किसी वक्त तो खामोश हो जाओ। और सह सह का माना है अभी खामोश हो जाओ, देखा ये मारिफा है, अभी यानी इस वक्त के अंदर क्या हो जाओ खामोश हो जाओ। तो ये तनवीन तनकीर है जो इसमें फेल में आती है। अगली किस्म थी तनवीन इवज, तनवीन इवज याद रखो वो तनवीन है जो मुजाफ इले के इवज में आती है, वो मुजाफ इले मुफरत भी हो सकता है और जुमला भी, जैसे यौम इज़िन, ये असल में क्या था, यौम इज काना कजा, यौम इज ये इज मुजाफ है और काना कजा पूरा जुमला मुजाफन इले है, और फिर इस काना कजा जुमले को हजफ करके इज को तनवीन दे दी जाती है यौम इज़िन, यौम इज़िन। और ये तनवीन इसी तरह हमेशा इसी तरह कसरा के साथ ही आएगी, यौम इज़िन, यौम इज़न या यौम इज़ुन नहीं कह सकते, यौम इज़िन इसी तरह। जबकि कुल्लू और बाजू पर भी तनवीन आती है और वो भी मुजाफिले के इवज होती है, कुल्लू और
बाजू,
बाजू कुल का माना सारा, भाई किस चीज का सारा, सारी किताबें या सारे तलबा या सारे कलम, तो उसके लिए आगे हमेशा मुजाफिले चाहिए। इसी तरह बाज के लफ्ज के लिए भी हमेशा क्या चाहिए, मुजाफिले। तो ये कुल्लू और बाजू पर बाज़ औकात मुजाफिले को हजफ कर लेते हैं और उसके इवज इन पर तनवीन ले आते हैं, तो ये तनवीन इवज है मुजाफुन इले से। तो जहां भी आपको कुल्लुन तनवीन के साथ नजर आए या कुल लन तनवीन के साथ हो या कुल लिन, तो आप समझ जाएं कि ये तनवीन इवज है किससे, मुजाफिले से। और सबसे आसान यह है कि वहां वाहिद का लफ्ज मुजाफिले निकाल लें, कुल्लु वाहिदिन, तो कुल्लुन ये किस माना में है, कुल्लु वाहिदिन के माना में है। और ये कुल्लुन पर जो तनवीन इवज आई मुजाफिले का, इस पर रफा नसब जर तीनों सूरतों में आ सकती है। यौम इज़िन में तो सिर्फ कसरा के साथ आएगी वो तनवीन, लेकिन कुल्लुन में तनवीन जो मुजाफिले का इवज है वो जम्मा के साथ भी आ सकती है, फतहा के साथ भी और कसरा के साथ भी, कुल्लुन कुल्लन कुल्लिन, मौके के मुताबिक जैसा आमिल होगा वही एराब कुल्लू पर आएगा भाई। और अगली किस्म थी तनवीन मुकाबला। उलमाए नहव फरमाते हैं कि ये जमा मुअन्नस सालिम पर जो तनवीन आती है ये तनवीन मुकाबला है, ये जमा मुजक्कर सालिम के मुकाबले में इसको तनवीन दी गई। जमा मुजक्कर सालिम के अंदर आखिर में नून आ रहा था, नून भाई, तो उसके मुकाबले में जमा मुअन्नस सालिम को भी तनवीन दे दी, और तनवीन भी किसका नाम है, नून साकिन का, तो वहां नून था तो यहां भी नून दे दिया गया। और अगली किस्म जो है वो तनवीन तरन्नुम है। तनवीन तरन्नुम वो है जो अशआर के अंदर इस्तेमाल होती है शेर का वजन सही रखने के लिए, उसमें तरन्नुम पैदा करने के लिए, उसमें नून साकिन होगा तो उससे गुन्ना किया जाता है उसमें, और नाक में आवाज ले जाते हैं और आवाज को लंबा करते हैं और इससे शेर में तरन्नुम पैदा होगा, आवाज खुशगवार होगी और सुनने में लुत्फ आएगा भाई। और ये जो तनवीन तरन्नुम है ये इसम फेल हर्फ सब पर दाखिल होती है। और शेर जो इन्होंने मिसाल में जिक्र किया था देखो, उसमें असाबन ये असाबा फेल है और इसके आखिर में तनवीन तरन्नुम जोड़ दी तो फेल के साथ तनवीन आ गई। और इसी तरह अलइताबन, अलइताबन ये अलिफ्लाम इस पर दाखिल था और इसके आखिर में तनवीन तरन्नुम जोड़ दी, हालांकि अलइताब पर तो क्या दाखिल है, अलिफ्लाम, और अलिफ्लाम के साथ तनवीन जमा नहीं होती, लेकिन ये तनवीन तरन्नुम है, ये तरन्नुम के लिए आती है, ये हर किस्म के लफ्ज के साथ जुड़ जाती है। तो शायर इसको मौके के मुताबिक जरूर शेर का वजन दुरुस्त रखने के लिए और उसमें तरन्नुम पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आगे देखिए भाई, दहम नूने ताकीद दर आखिर फेले मुजारे सकीला व खफीफा चूं इजरी बन ना इजरी बन। दसवीं किस्म आगे हरूफ गैर आमिला की बई, और वो नूने ताकीद है। ये नूने ताकीद इसका जिक्र पहले भी हो चुका है कि ताकीद के लिए दो नून इस्तेमाल किए जाते हैं और एक को नूने सकीला कहते हैं और एक को नूने खफीफा। सकीला जिस जो सकील का माना है वजनी, वजनी सकीला यानी जिसकी अदायगी जरा दुश्वार है जुबान पर, और खफीफ का माना है हल्का होना, तो जिसकी अदायगी जुबान पर आसान है हल्की है। ये नून सकीला दरअसल नून मुशद्दद का नाम है, किसका, नून मुशद्दद, यानी ये दो नून होते हैं जिनके अंदर इदगाम किया गया है, जैसे इजरीबन यह है नून सकीला, इसको नून सकीला के इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दो नून हैं और दो हर्फों की अदायगी जुबान पर दुश्वार है, जबकि इसके मुकाबले में एक हर्फ उसकी अदायगी आसान होती है। देखिए आप खुद अदा करके जरा देखें कि इजरी बन्ना, और एक है इजरी बन, किसकी अदायगी मुश्किल, इजरी बन ना, देखा, क्योंकि इसमें आखिर में नून मुशद्दद है, इसलिए उसको नून सकीला कहते हैं। सकीला क्या माना, जुबान पर उसकी अदायगी दुश्वार है, वजनी है, मुश्किल है। और नून खफीफा क्या माना, कि जुबान पर उसकी अदायगी खफीफ है, आसानी से अदा हो जाता है। तो यह ताकीद के लिए आता है, कलाम में जोर पैदा कर देता है। जैसे आप किसी को कहते हैं ए जरिब, तू पिटाई कर, और एक है ए जरिबन ना, यानी तू जरूर पिटाई कर, देखो कलाम में जोर पैदा हो गया। इसी तरह ए जरिबन, इसका माना भी है तू जरूर पिटाई कर, तो यह नून कलाम में ताकीद पैदा करता है। फेल मुजारे के साथ भी यह जुड़ता है, इसी तरह अमर के साथ भी और नहीं के साथ भी। ये जैसे यज़रिबू, इसके साथ नूने सकीला जोड़ें, लयज़रिबन्ना, लया शुरू में ला में ताकीद भी ले आएंगे, लयज़रिबन्ना, और नूने खफीफा जोड़ें, लयज़रिबन्न, और अमर और नहीं में, अमर में इज़रिब, इसके आखिर में नूने सकीला जोड़ें, इज़रिबन्ना, और नूने खफीफा जोड़ें, इज़रिबन्न, और नहीं के साथ भी ला तज़रिब, ला तज़रिबन्न, और नूने खफीफा जोड़ें, ला तज़रिबन्न। तो ये फेले मुजारे के साथ भी जुड़ते हैं, इसी तरह अमर के साथ भी और नहीं के साथ भी, और ये कलाम में जोर पैदा करते हैं, ताकीद पैदा करते हैं। तो कहते हैं दहुम नूने ताकीद, दसवीं किस्म हरूफ गैर आमिला की वो नूने ताकीद है, दर आखिर फेले मुजारे, जो कहां आता है, फेले मुजारे के आखिर में। फेले मुजारे को जिक्र किया, बाकी अमर और नहीं को जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो भी फेले मुजारे से ही बनते हैं। अमर का सीगा किससे बनाया जाता है, फेले मुजारे से। नहीं भी किससे बनता है, फेले मुजारे से। तो कहते हैं दसवीं किस्म नून ताकीद है, दर आखिर फेले मुजारे, जो फेले मुजारे के आखिर में आता है, सकीला व खफीफा, और सकीला और खफीफा होता है जो इजरी बनना। देखो ये मिसाल अमर की दे दी, जिक्र किया फेले मुजारे को, और आगे मिसाल किसकी दे दी, अमर की दे दी। बतलाना ये चाहते हैं भाई, जब फेले मुजारे के साथ आता है तो जो चीजें फेले मुजारे से, जो सीगे बनते हैं, उनके साथ भी ये आएगा, जैसे अमर और नहीं। तो इज़रिबन्ना ये नूने सकीला की मिसाल, और इज़रिबन ये नूने खफीफा की मिसाल। याज़दहुम हुरूफ़े ज़्यादत, ग्यारहवीं किस्म है हुरूफ़े ज़्यादत, यानी वो हुरूफ़ जो ज़ायद होते हैं, वो हुरूफ़ जो, भाई कलाम अरब में याद रखो, कभी कभार कलाम को हसीन बनाने के लिए और उसमें जरा जोर पैदा करने के लिए कभी ज़ायद हुरूफ़ भी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। कुछ हुरूफ कलाम का हुसन बढ़ाने के लिए और कलाम में जरा जोर और ताकीद पैदा करने के लिए कुछ जायद हुरूफ भी ले आते हैं। जायद का माना यह है, यानी माना के वो अपने माना का फायदा नहीं देते, उनको लाएं या ना लाएं माना पे कोई असर नहीं पड़ता, उनको लाएं या ना लाएं माना पर कोई असर नहीं पड़ता। सिर्फ किस लिए उनको बढ़ाया जाता है, कलाम में हुसन पैदा करने के लिए और कलाम में जोर पैदा करने के लिए। और इसी तरह कभी कभार शेर में लाते हैं वजन वगैरह को बरकरार रखने के लिए। तो यह नहीं कि इनका नाम जायद है तो यह बिल्कुल ही जायद और बेकार होते हैं, बल्कि जायद होने का यह माना कि ये अपने माना का फायदा नहीं देते, यानी इनको रखें या निकाल दें कलाम के माना में कोई असर नहीं पड़ेगा। हां ये बिल्कुल बेकार भी नहीं, ये कलाम में हुसन भी पैदा करते हैं, उसमें ताकीद भी पैदा करते हैं, और बाज़ औक़ात शेर का वजन वगैरह भी इनके जरिए दुरुस्त किया जाता है। भाई तो कहते हैं याज़दहुम हुरूफ़े ज़्यादत, ग्यारहवीं किस्म जो है वो हुरूफ़े ज़्यादत हैं, व आ हश्त हर्फ अस्त, और वो आठ हर्फ हैं, इन व अन व मा व ला व मिन व काफ व बा व लाम। इन है, अन है, मा ला और मिन है, काफ है, बा है, बा जार्रा जो है, और इसी तरह लाम है, लाम जार्रा। भाई तो ये हमेशा ही जायद नहीं होते, ये कभी जायद होते हैं, वैसे ही अपने मानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। भाई बात समझ में आ रही है, कभी कभार मुख्तलिफ मानी के लिए इस्तेमाल होते हैं और हर जगह जायद नहीं होते, लेकिन बाज़ औक़ात अगर कलाम में जायद हरूफ लाए जाएं तो इन्हीं में से लाया जाता है, और उस वक्त जब ये जायद होते हैं फिर ये अपने माना का फायदा नहीं देते। और इनमें से जो आखिरी चार हैं, मीन, काफ, बा और लाम, ये जायद हैं, लेकिन ये हरूफ जारा में से हैं, ये फिर भी जर देंगे। ये जब जायद आ जाएं फिर भी क्या करेंगे?
जर देंगे,
देंगे। जैसे एक मिन है, काफ है, बा है। बा की मिसाल मसलन जैदुन लैसा बिआलिमिन, जैदुन लैसा बिआलिमिन, ये बिआलिमिन, ये जो बा जारा है लैसा की खबर पर आती है और ये जायद है। ये सिर्फ कलाम में हुसन पैदा करने के लिए और उसमें ताकीद पैदा करने के लिए है। अगर इसको निकाल भी दें तो इसे माना पर कोई असर नहीं पड़ता। जैदुन लैसा भी आलिमिन कहें या जैदुन लैसा आलिमन कहें, दोनों का एक ही माना है, लेकिन लफ्जों में यह अमल कर रही है। देखें, भी आलिमिन जर दे रही है
जी।
तो लफ्जों में अमल कर रही है तो जायद है बाई लिहाज के माना में कोई फायदा नहीं दे रही। तो ये जो मीन है, काफ है, काफ जारा जो होता है, इसी तरह बा है और इसी तरह लाम जारा, ये भी हरूफ जायद हरूफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जब जायद के तौर पर भी इस्तेमाल होंगे ये अपना असर दिखाएंगे और जिस लफ्ज पर दाखिल होंगे उसको जर दे देंगे। फिर एक और बात याद रखना कि हरूफ जारा इनके लिए हमेशा कोई ना कोई मुतअल्लिक चाहिए, ये किसी न किसी चीज से मुतअल्लिक होते हैं, लेकिन जब ये हरूफ जारा जायद हो तो फिर ये किसी से मुताल्लिक नहीं होते, ये फिर ये किसी से मुताल्लिक नहीं होते। जैसे जैदुन लैसा भी आलिमिन, तरकीब कैसे करेंगे? जैदुन मरफू लफजान मुब्तदा, लैसा फेल अफाले नाकिसा, और इसके अंदर हुआ जमीर जो राजे है जैद को वो इसका इसम, और भी आलिमिन बा जारा, आलिमिन मजरूर लफजन लेकिन मनसूब महलन, मनसूब
महल्लन,
क्योंकि ये लैसा की खबर है और लैसा की खबर क्या होती है? मनसूब होती है। तो ये बा जारा जायद आया, ये जर तो दे रहा है लेकिन महल के एतबार से ये आलिमीन का लफ्ज क्या है? मनसूब है, ये लैसा की खबर है तो ये मनसूब महल्लन, और ये खबर हुई किसके लिए? लैसा के लिए। अब आप ये ना कहें बा जारा जार मजरूर मिलकर साबितन से मुतालिक हो रहे हैं, नहीं नहीं, ये हरफे जायद है और हरूफ जारा जायदा किसी से मुतअल्लिक नहीं होते। तो बस उसमें सिर्फ इतना आप बताएं कि यह बाजारा जायदा है, आलिमिन मजरूर लफजन है लेकिन मनसूब महलन है, महल के एतबार से यह क्या है? मनसूब है, लैसा की खबर है, लैसा अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला फेलिया होकर खबर, मुबतदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। तो कहते हैं याजदहुम हरूफ ज्यादत, ग्यारहवीं किस्म हरूफ ज्यादत हैं, यानी वो हरूफ जो जायद होते हैं, वहां हश्त हरफस्त और वो आठ हर्फ हैं, इन व अन व मा व ला व मिन व काफ व बा व लाम। चहार आखिर दर हरूफ जर याद करदा शुद, चहार आखिर आखिरी चार जो हैं दर हरूफ जर, ये हरूफ जर में याद करदा शुद इनको जिक्र किया गया। हुरूफ जारा का जिक्र आया था भाई, कहां पर जिक्र आया था जी? हुरूफ आमिला के अंदर इन्होंने आपको बतलाया था कि हुरूफ जारा कितने हैं? 17 हैं, और वो इन्होंने आपको गिनवाए थे। तो ये आखिरी चार जो हैं, यानी मीन, काफ, बा और लाम, ये चहार आखिर दर हुरूफ जर याद करदा शुद, इनको हुरूफ जर में याद जिक्र किया गया है। द्वाजदहुम हुरूफ शर्त, बारहवीं किस्म है हरूफ शर्त भाई, वहां दो अस्त और वो दो हैं, अम्मा व लौ, एक अम्मा है और एक लौ है, ये हरूफ शर्त हैं और ये अमल नहीं करते। वैसे तो हरूफ शर्त आपने पीछे भी पढ़ा था इन वगैरह, लेकिन वो अमल करते हैं, वो क्या करते हैं? वो फेले मुजारे को जजम देते हैं, ये अमल नहीं करते। तो कहते हैं द्वाजदहुम हरूफ शर्त, वहां दो अस्त और वो दो हैं, अम्मा व लौ, एक अम्मा है और एक लौ। अम्मा बराए तफसीर भाई, अम्मा तफसीर के लिए आता है, अम्मा किसके लिए? एक बात इजमालन जिक्र कर दी जाए, तफसील नहीं होती उसमें, तो फिर अम्मा के जरिए आगे उसकी तफसील और तफसीर बयान की जाती है। बात समझ में आ गई। अम्मा जो आता है वो तफसील के लिए, यानी तफसील बयान करने के लिए। किस लिए आता है? एक तफसीर है, एक तफसील है, फा के बाद सौद है और या और फिर लाम बई लाम, तो ये तफसील बयान करने के लिए आता है। किस लिए? तफसील किसी चीज में, किसी चीज कोई चीज जिसमें इजमाल हो उसकी तफसील बयान करने के लिए ये अम्मा इस्तेमाल होता है। तो जब तफसील आ जाएगी तो तफसीर भी हो जाएगी, बात भी पूरी समझ में आ जाएगी, वजाहत हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो तफसीर से यहां मुराद तफसील है। तफसीर से यहां क्या मुराद है? तफसील मुराद है कि ये तफसील बयान करने के लिए आता है। एक चीज जिसको इजमालन बयान किया गया हो यानी मुख्तसरन, ये अम्मा आकर उसकी तफसील बयान कर देता है। जैसे ये मिसाल देखो, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं फमीन हम शकीयों व सईद, तो बाज इनमें से बदबख्त हैं। शकी का माना बदबख्त, व सईद, सईद का माना है नेकबख्त। तो बाज इनमें से बदबख्त हैं और बाज उनमें से नेकबख्त हैं। अब आगे अम्मा के जरिए देखो तफसील बयान की जाएगी। अल्लाह क्या बतला रहे हैं? कुछ बदबख्त हैं, कुछ नेकबख्त हैं। अब तफसील नहीं थी कि बदबख्त जो हैं उनके साथ क्या मामला होगा और नेकबख्त जो हैं उनके साथ क्या मामला होगा। तो अम्मा के जरिए फिर तफसीर की गई कि जो बदबख्त हैं वो जहन्नम में डाले जाएंगे और जो नेकबख्त हैं वो जन्नत में दाखिल होंगे। माना समझ में आया? तो कहते हैं फमीन हुम शकीयुं व सईद, तो बाज इनमें से बदबख्त हैं और बाज नेकबख्त। फअम्मल्लदीन शकू फफिन्नार, तो वो लोग जो बदबख्त हैं फफिन नार, पस वो किस में होंगे? आग में, यानी जहन्नुम में होंगे। वह अम्मल लदीन सुईदु, और बाकी वो लोग जो नेकबख्त हैं फफिल जन्नती, तो वो जन्नत में होंगे। देखो अब तफसील बयान हो गई किसके जरिए? अम्मा के जरिए। फ अम्मल लदीन, इस अम्मा के जरिए। तो कहते हैं वह अम्मा बराए तफसीर, अम्मा जो है तफसीर यानी तफसील के लिए आता है। वह फा दर जवाबश लाजिम बाशद, और फा इसके जवाब में लाजिम होती है। यह जो अम्मा है यह मुतजमिन है माना शर्त को, इसमें शर्त वाला माना पाया जाता है और शर्त की जजा पर क्या दाखिल करते हैं? फा। तो लिहाजा यहां पर भी अम्मा के जवाब में, तो अम्मा के साथ फिर फा जरूर इस्तेमाल होगी। जैसे यहां भी देखें फअम्मल लदीन, अम्मा आ गया तो फअम्मल लदीन शकू फफिन नार, देखो ये फा आ गई। और इसी तरह अम्मल लदीन सुईदु फफिन नार, ये जो फा आई ये किसकी वजह से लाई गई? अम्मा की वजह से, क्योंकि अम्मा मुतजमिन है मानाए शर्त को। इसमें किसका माना है? शर्त वाला, और शर्त के जवाब में क्या लाई जाती है? फा लाई जाती है। तो कहते हैं अम्मा बराए तफसीर, अम्मा जो है वो तफसीर यानी तफसील के लिए आता है। वफा दर जवाबश लाजिम बाशद, और फा उसके जवाब में लाजिम होती है। कौली ही ताला, जैसे कि अल्लाह ताला का कौल है फमीन हम शकीयूं व सईदुन, तो इनमें से बाज बदबख्त हैं और बाज नेकबख्त हैं। फअम्मल लदीन शकू फफिन नार, तो वो लोग जो बदबख्त हैं फफिन नार, पस वो आग में होंगे। व अम्मल लदीन सुईदु फफिल जन्नती, और वो लोग जो नेकबख्त हैं वो जन्नत में होंगे। अल्लाह हमारा शुमार भी नेकबख्तों में फरमाए भाई। वलव बरा इंतफाए सानी बस अब इंतफाए अव्वल जी, और लव भी बताया। हरूफ शर्त कितने हैं? दो, अम्मा और लौ। अब लौ के बारे में बयान कर रहे हैं, कहते हैं वह लौ बराए इंतफाए सानी बसबब इंतफाए अव्वल। लौ आता है इंतफाए सानी के लिए, लौ बराए लौ आता है इंतफाए सानी के लिए बसबब इंतफाए अव्वल, बवजह इंतफाए अव्वल, क्योंकि अव्वल मुंतफी होता है। याद रखो ये जो लौ है ये सानी की नफी करता है बवजाय इंतफाए अव्वल। जैसे देखो मिसाल से बात समझ में आएगी। इंतफा का माना नफी करना, नफी करना। लौ जितनी ल अकरम तू का, लौ जितनी अगर आप मेरे पास आए होते, ल अकरम तू का तो मैंने आपका इकराम किया होता। तवज्जो है
जी।
दो जुमलों पर लौ, दो जुमलों पर दाखिल हो रहा है। लौ जितनी अगर आप मेरे पास आए होते, यह है पहला जुमला। ल अकरम तू का तो मैं आपका इकराम करता। तो लव किस लिए आता है? इंतफाए सानी के लिए बवजह इंतफाए अव्वल, यानी सानी नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? क्योंकि अव्वल नहीं पाया गया। तवज्जो है, लौ किस लिए आता है? इंतफा का क्या माना? ना होना, ना होना। तो ये इंतफाए सानी के लिए आता है, यानी सानी जो है वो मुंतफी है, वो नहीं पाया गया। सानी क्या था यहां पर? ला अकरम तुका, लौ जितनी ला अकरम तुका, अगर आप आए होते तो मैं आपका इकराम करता। इकराम मुंतफी है, यानी मैंने आपका इकराम नहीं किया, मैंने आपका इकराम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पहला मुंतफी है, आप आए नहीं। लौजी इतनी, अगर आप आए होते तो मैं क्या करता? आपका इकराम करता। मैंने इकराम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि आप आए नहीं। बात समझ में आ गई? तो लौ किस लिए आता है? इंतफाए सानी के लिए, बवजह इंतफाए अव्वल। सानी मुंतफी है क्योंकि अव्वल क्या है? मुंतफी। यहां लौ जितनी यह है अव्वल, अगर आप आए होते, और आप आए हैं
नहीं
तो यह अव्वल भी मुंतफी है। और ला अकरम तू का, तो मैं आपका इकराम करता, मालूम हुआ इकराम भी मुंतफी। तो लौ ने बताया कि यह सानी क्या है? मुंतफी है, वो उसका वजूद नहीं, इकराम नहीं पाया गया। क्यों नहीं पाया गया? क्योंकि अव्वल मुंतफी था, आना नहीं पाया गया, वो आया नहीं मुखातब। तो लौ किस लिए आता है? इंतफाए सानी के लिए, बवजह इंतफाए अव्वल के। लौ जितनी ला अकरम तू का, बात समझ भी आई कि नहीं आई? इंतफा का क्या माना? ना होना। तो देखो जिक्र तो है लौ जितनी, कोई नफी है? ला या मा वगैरह जिक्र है?
नहीं,
सिर्फ इतना, अगर आप आए होते, ला अकरम तू का, तो मैं क्या करता? आपका इकराम करता। नफी वाला कोई हर्फ मा या ला वगैरह यहां नहीं, लेकिन ये लौ खुद नफी का फायदा देता है, ये दलालत करता है, ये हमें बतलाता है कि सानी मुंतफी है, यानी इकराम मुंतफी है। और उसकी वजह क्या? क्यों मुंतफी है? क्योंकि अव्वल मुंतफी है। इकराम नहीं किया गया, क्यों नहीं इकराम किया गया? क्योंकि मुखातब आया नहीं। मुतकल्लिम ने मुखातब का इकराम नहीं किया, और क्यों नहीं किया? क्योंकि वो उसके पास आया नहीं। आप खुद जरा इस जुमले पर गौर करें, आप खुद गौर करें। उर्दू में मैं किसी से कहता हूं, अगर आप मेरे पास आए होते तो मैं आपको इनाम देता, अगर आप मेरे पास आए होते तो मैं आपको इनाम देता। ये जुमला किसको मैं कहूंगा? जिसको मैंने इनाम दिया है या जिसको इनाम नहीं दिया? हां, जिसको इनाम नहीं दिया उसको मैं कहूंगा कि अगर आप मेरे पास आए होते तो मैं आपको इनाम देता। मालूम हुआ मैंने इनाम नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो आया नहीं। तो सानी मुंतफी है, सानी की नफी हो रही है। क्यों? क्योंकि अव्वल मुंतफी है, अव्वल की नफी है, वो आया नहीं, इसलिए उसका उसको इनाम भी नहीं मिला। भाई बात समझ में आ गई? या दूसरी मिसाल ले लें, उससे और ज्यादा वजाहत हो जाएगी, और ज्यादा वजाहत हो जाएगी। मसलन कोई तालिब इलम है, वो इम्तिहान में फेल हो गया, अब आप उससे कहते हैं लविज तहद लनजह तफिल इम्तिहान। इज्तहद का माना है मेहनत करना, और नजह के माने है कामयाब होना। लविज तहत्ता, अगर तूने मेहनत की होती लनजह तफिल इम्तिहान, तो तू इम्तिहान में कामयाब होता। यह जुमला आप किसको कहते हैं? जो कामयाब हो गया हो या जो फेल हुआ हो? जो फेल हुआ हो उसको कहते हैं अगर तुमने मेहनत की होती तो इम्तिहान में कामयाब हो जाते। अब जरा लफ्जों पर गौर करें, लविज तहत्ता लनजह ता, अगर आपने मेहनत की होती लनजह ता, तो आप क्या होते? कामयाब। और सानी क्या है? कामयाबी। वो कामयाबी तो मुंतफी है, आप कामयाब नहीं हुए। और क्यों मुंतफी है? उसका सबब क्या है? अव्वल, यानी कि आपने मेहनत नहीं की। तो सानी मुंतफी है, किस वजह से? क्योंकि अव्वल मुंतफी है। तो लौ किस लिए आता है? लौ हमें यह बात बतलाता है कि सानी जो है वो मुंतफी है, यानी उसका वजूद नहीं, क्योंकि अव्वल जो है वो मुंतफी है, यानी उसका वजूद नहीं है। बात समझ में आ गई? तो लौ किस लिए आता है? इंतफाए सानी के लिए, बवजह सानी। इकराम क्यों मुंतफी? उसकी वजह क्या? क्योंकि अव्वल मुंतफी है। फिर दोहराओ, सानी इंतफाए सानी बसबब इंतफाए अव्वल, सानी मुंतफी है किसकी वजह से, क्योंकि अव्वल मुंतफी है। माना समझ में आ गया? तो कहते हैं वल्लाह बरा इंतफाए सानी बसबब इंतफाए अव्वल, लव जो है वो इंतफाए सानी के लिए होता है बसबब इंतफाए अव्वल, सबब का माना वजह, वजह बवजह इंतफाए अव्वल कि सानी मुंतफी है बवजह अव्वल के मुंतफी होने के। चूं लौकान फी हिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर होते फी हिमा इस जमीन और आसमान में आलिहतुन और माबूद, अगर इस जमीन और आसमान में और माबूद होते इल्लल्लाहु इलावा अल्लाह के लफसदता, तो ये दोनों फासिद हो जाते, इनका निजाम खराब हो जाता। अगर जमीन और आसमान में अल्लाह के अलावा और माबूद होते तो जमीन और आसमान का निजाम खराब हो जाता, और जमीन और आसमान का निजाम खराब नहीं क्योंकि यहां पर अल्लाह के अलावा और कोई माबूद नहीं है। तो सानी मुंतफी किस वजह से, क्योंकि अव्वल मुंतफी है। भाई आगे देखिए, सीजदहुम तेरहवीं किस्म हरूफ गैर आमिला की लौला, वो क्या है? लौला है, ये भी वही लौ है भाई, सिर्फ इसके साथ ला इस्तेमाल होता है लौ ला। और लौ किस लिए आता था? इंतफाए सानी बवजह इंतफाए अव्वल, तवज्जो है, इंतफाए सानी बवजह इंतफाए अव्वल, सानी मुंतफी है, सानी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अव्वल नहीं है, जबकि लौ ला में ला जुड़ा हुआ है, ये वही लौ है, इसके साथ ला हरफ नफी भी इस्तेमाल होता है। वो मौजू अस्त बरा इंतफाए सानी बसबब वजूद अव्वल, और ये वजह किया गया है, मुकर्रर किया गया है बरा इंतफाए सानी के, सानी मुंतफी है उसकी नफी के लिए, बसबब वजूद अव्वल किस वजह से, अव्वल के वजूद की वजह से कि अव्वल मौजूद है। सानी मुंतफी है क्योंकि अव्वल, जैसे देखो भाई, लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर हजरत अली ना होते लहलका उमर तो उमर हलाक हो जाते। लौला अलीयुन, अगर अली ना होते हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ना होते लहलका उमर, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हलाक हो जाते। लेकिन हलाकत उमर मुंतफी है, क्यों? बवजह वजूद अली के। नहीं समझ में आई बात? लौ किस लिए आता था? इंतफाए सानी बवजह इंतफाए अव्वल, सानी मुंतफी, सानी चीज नहीं पाई गई। क्यों नहीं पाई गई? क्योंकि अव्वल नहीं पाया गया था, जबकि यहां लौला के अंदर सानी चीज नहीं पाई गई क्योंकि अव्वल मौजूद है, क्योंकि अव्वल। तो ये इंतफाए सानी के लिए आता है बवजह वजूद अव्वल के। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मर्तबा भाई कोई मुकदमा पेश हुआ, कोई औरत थी शादीशुदा और उसने जिना किया था और जिना से वो हामिला थी, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको रजम करने का हुक्म दिया। जिना साबित हो गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे रजम करने का हुक्म दिया। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उस मौके पर मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि या अमीर अल मोमिनीन कि यह औरत जो है इसने तो जुर्म किया है, ठीक है इसको तो रजम किया जाए, लेकिन इसके पेट में जो बच्चा है उसका तो कोई कसूर नहीं, अगर इसको रजम करेंगे तो वो बच्चा भी मारा जाएगा, तो एक जान ना हक चली जाएगी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु चौंक उठे और फरमाया कि हां, इस बात की तरफ तो मेरी तवज्जो ही नहीं थी और तुमने मुझे मुतनब्बेह कर दिया, वरना मेरे फैसले की वजह से एक जान ना हक चली जाती। चुनांचे उस मौके पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया लौला अलीयुन लहलका उमर, अगर हजरत अली ना होते तो उमर तो हलाक हो गया था। देखा आखिरत की कितनी फिक्र थी उन लोगों को कि वो सहाबा जो किसी पर अदना दर्जे में भी ज्यादती नहीं बर्दाश्त करते थे, तो खौफ से कांप उठे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो कि मेरी वजह से एक जान चली जाती तो आखिरत में मैं अल्लाह को क्या जवाब देता भाई। तो इस मौके पर उन्होंने फरमाया लौला अलीयुन लहलका उमर भाई, लौला अलीयुन, अगर अली ना होते लहलका उमर, तो उमर हलाक हो गए थे, और हलाकत उमर तो मुंतफी है, حضرت عمر تو ہلاک نہیں. تو چنانچہ پھر اس عورت کو مہلت دے دی گئی کہ جب یہ اس حمل کو جنم دے دے گی تو اس کے بعد پھر اس کو رجم کیا جائے گا. تو لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو حضرت عمر تو ہلاک ہو گئے تھے. تو ہلاکت عمر منتفی ہے, حضرت عمر ہلاک نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے ہلاک؟ کیونکہ حضرت علی موجود تھے. تو ثانی منتفی ہے بوجہ وجود اول کے. تو کہتے ہیں سیزدہم, تیرہویں قسم جو ہے لولا ہے, وہ موضوع اور وہ وضع ہے, یعنی اس کو مقرر کیا گیا ہے برائے انتفاع ثانی, سبب وجود اول ثانی کے منتفی ہونے کے لیے بوجہ اول کے پائے جانے کے, بسبب وجود اول بوجہ اول کے موجود ہونے کے. چون لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا تھا. چہاردہم, لام مفتوحہ برائے تاکید. چودویں قسم جو ہے وہ لام مفتوحہ ہے جو تاکید کے لیے آتا ہے. چون لزید افضل من عمر, یہ لام جو ہے یہ مبتدا پر داخل ہوتا ہے تاکید کے لیے. اسی طرح فعل مضارے پر بھی تاکید کے لیے آتا ہے. لزید, یہ زید ہے مبتدا, اور افضل من عمرین یہ ہے اس کی خبر. تو یہ مبتدا پر جو لام آیا یہ کس لیے ہے؟ تاکید کے لیے ہے, اور کلام میں زور پیدا کر دیتا ہے. اور یہ لام مبتدا پر بھی داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع پر بھی. تو کہتے ہیں لام مفتوحہ برائے تاکید. چون لام مفتوحہ یعنی ایسا لام جس پر فتحہ ہے, زبر ہے. ویسے تو لام جارہ ہے نا, لے زیدین, وہاں تو لام کے نیچے کسرہ ہوتا ہے, لیکن یہ لام مفتوح ہوتا ہے, اس پر زبر ہوتی ہے. تو کہتے ہیں لام مفتوحہ برائے تاکید, وہ لام مفتوحہ جو تاکید کے لیے آتا ہے. چون لزید افضل من عمر, زید البتہ افضل ہے عمر کے مقابلے میں. پانچ دہم پندرہویں قسم بھائی حروف غیر عاملہ کی, ما بمانے ما داما, وہ ما جو ما داما کے معنی میں ہو. چون اقوم ما جلس الامیر, اقوم ما جلس الامیر, یہ ما جو ہے یہ ما داما کے معنی میں ہے. اقوم میں کھڑا رہوں گا, ما جلس الامیر, یہ ما کس معنی میں؟ ما داما یعنی جب تک. اقوم میں کھڑا رہوں گا, ما جلس الامیر جب تک امیر بیٹھا ہے, ای ما داما جلس الامیر جب تک امیر. اقوم ما جلس الامیر, میں کھڑا رہوں گا جب تک امیر بیٹھا ہے. تو یہ ما کس معنی میں ہے؟ ما داما کے معنی میں ہے. اور کیا ترجمہ کریں گے؟ جب تک. اور یہ دو فعلوں کے درمیان آتا ہے, دو فعلوں کے درمیان. بھائی دیکھو, ما قبل میں اقومو کا فعل ہے اور ما بعد میں جلسا کا فعل ہے. شانزدہم سولہویں قسم جو ہیں حروف عطف, وہ حروف عطف ہیں. وآں دہست, اور وہ دہ ہیں بھائی, وو وفا وسما وحتا وئما واو وام ولا وبل ولاکن. یہ دس حروف ہیں بھائی, یہ عطف کے لیے آتے ہیں. اور عطف کی تفصیل پیچھے عطف بحرف میں بیان ہو چکی ہے. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں میرے پاس زید بھی آیا اور عمر بھی آیا, تو جا انی زیدن مجھے کہنا پڑے گا, اور عمر کے لیے علیحدہ کہنا پڑے گا جا انی عمرن, کیونکہ فاعل ایک ہی آتا ہے, ایک سے زیادہ نہیں. تو بجائے دو جملے کہنے کے پھر حروف عطف کی مدد لی جاتی ہے, جا انی زیدن و عمرن. تو اس واو نے کیا فائدہ دیا؟ کلام کو مختصر کر دیا. اور جو حروف عطف سے پہلے آئے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ, اور جو بعد میں آئے اس کو کہتے ہیں معطوف. اور معطوف علیہ اور معطوف دونوں مقصود بن نسبت ہوتے ہیں. معلوم ہوا آپ آنے کی نسبت زید کی طرف بھی کرنا چاہتے ہیں اور عمر کی طرف بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ حروف عطف ہیں. تو کہتے ہیں شانس دہم سولہویں قسم جو ہے حروف عطف ہیں. وہ آ دہست, اور وہ دس ہیں, وو وفا وسما وحتا و اما و او و ام ولا و بل ولاکن, یہ دس حروف ہیں. حاصل کلام پھر سن لیں. آج آپ نے نون تاکید کے بارے میں پڑھا, جو کلام میں تاکید اور زور پیدا کرنے کے لیے آتا ہے, اور یہ فعل مضارع کے آخر میں بھی آتا ہے, امر اور नहीं के आखिर में भी आता है, और ये दो किस्म पर है, एक नूने सकीला और एक नूने खफीफा। उसके बाद इन्होंने हरूफ ज्यादत बतलाए, कुछ हरूफ जो जायद आते हैं कलाम अरब में और वो कलाम में हुसन पैदा करते हैं और ताकीद का फायदा देते हैं, अलबत्ता अपना माना का फायदा नहीं देते। और इनमें से कुछ हरूफ जारा भी थे, और ये जब जायद हों तब भी माना में तो कोई फायदा नहीं देंगे, माना का असर तो नहीं देंगे, लेकिन जिस पर दाखिल होंगे उसको जर जरूर देंगे। और ये जो हरूफ ज्यादत है मैंने बतलाया हमेशा जायद नहीं होते, कभी जायद होते हैं और कभी बाकायदा इनका माना भी होता है। जायद होने का ये माना ही नहीं कि ये जहां भी आ जाएं आप कहें ये जायद है, नहीं नहीं, ये बास जगह जायद होंगे, वो फिर उलमा वहां वजाहत कर देते हैं कि यह हर्फ जायद है भाई, बाकी जहां भी ये आएंगे ये अपने माना का फायदा देंगे। उसके बाद हरूफ शर्त के बारे में आपने पढ़ा, और इन्होंने बतलाया कि वो दो हैं, अम्मा और लव। अम्मा जो है वो तफसील बयान करने के लिए आता है, एक चीज जिसमें इजमाल हो, इजमाल का क्या माना, यानी तफसील ना हो, तफसील ना हो, मुख्तसर बात हो, तो आगे अम्मा के जरिए उसकी तफसील बयान की जाती है, और ये अम्मा के अंदर शर्त वाला माना होता है, लिहाजा इसके साथ फा भी लाई जाती है भाई, इसके जवाब में फा जरूर लाई जाती है। और उसके बाद लव के बारे में बतलाया कि लव भी हुरूफ शर्त में से है, वो आता है इंतफाए सानी के लिए बवजह इंतफाए अव्वल के। और उसके बाद लव लाबत के बारे में बतलाया कि वो आता है इंतफाए सानी के लिए बवजह वजूद अव्वल के। और उसके बाद लाम मफ्तूहा ताकीद के लिए आता है, मुब्तदा पर भी दाखिल होता है और फेल मुजारे पर भी। और पंद्रहवीं किस्म थी मा, और जो मादामा के माना में है, और ये जब तक इसका तर्जमा होता है, और ये दो फेलों के दरमियान आता है। और सोलहवीं किस्म जो है वो इन्होंने आपको बतलाया, वो हुरूफ आतफ हैं और वो दस हैं, और वो आतफ का फायदा देते हैं भाई। बात समझ में आ गई अच्छी तरह, चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह नहमीर तो मुकम्मल हुई भाई, आगे मुस्तस्ना की बहस है, जो बाज़ उलमा ने नहमीर के आखिर में, मेरी किताब में तो ये दो मुकम्मल पूरे सफे हैं जिसमें मुस्तस्ना की बहस इन्होंने बाज़ उलमा ने साथ शामिल की है, और लिखा है कि चूं बहस मुस्तस्ना दर किताब नहमीर नबवद बराए फायदे तुल्लाब अफजूदा शुद, के चूंकि नहमीर के अंदर मुस्तस्ना की बहस नहीं थी इसलिए तलबा के फायदे के लिए इसको बढ़ा दिया गया, इसका इजाफा कर दिया गया। तो मेरा इरादा यह था कि आपको यह मुस्तस्ना की बहस भी मैं करवाऊं, लेकिन फिर जब मैंने इसको देखा तो इसमें बहुत ज्यादा तफसील है भाई, ये ऊला वालों के लिए इसको जब्त करना बड़ा मुश्किल है, इसमें तो पूरी बहस है, यानी यूं समझें अगले साल हिदायतुन्नह आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हिदायतुन्नह और उससे अगले साल है काफिया, तो इसमें इतनी मुफस्सल बहस दी है कि जो हिदायतुन्नह में या काफिया के अंदर जितनी मुफस्सल बहस दी हुई है इन्होंने यहां पर भी इतनी ही मुफस्सल बहस यहां शामिल कर दी, पूरी मुस्तस्ना की बहस है भाई। हालांकि नहमीर तो इब्तिदाई तलबा के लिए एक नहव की किताब है जिसमें सिर्फ नहव का तारुफ करवाया है कि रफा क्या होता है, नसब क्या है, जर क्या है, मौरब क्या है, मबनी क्या है, मौरब की कितनी किस्में हैं, मबनी की कितनी किस्में हैं, और किसी जगह भी उन्होंने तफसील ज्यादा नहीं की, हत्ता कि आप ये हरूफ के में देख रहे हैं आखिर में सिर्फ हरूफ के तादाद बताते जा रहे हैं और उनके नाम जिक्र कर रहे हैं कि वाओ है, फा है, सुम्मा, हत्ता किसी की कोई तफसील बयान नहीं की। इसी तरह गैर मुनसरिफ की बात आई, जरा भी उन्होंने तफसील नहीं बयान की, सिर्फ ये बताया कि गैर इंसराफ के नौ असबाब हैं। तो ये किताब चूंकि मुसन्निफ ने इब्तिदाई तलबा के लिए लिखी और इब्तिदाई तलबा के लिए ये चीजें काफी थी, इनसे नहव का उसको तारुफ हो जाता है, और अगले साल फिर हिदायत नहव के अंदर फिर नहव आती है और फिर वहां तफसील आ जाती है हर चीज की, और फिर उससे ज्यादा तफसील जो है काफिया में और फिर आगे शरे जामी के अंदर आती है। तो ये मेरा इरादा तो था कि आपको ये मुस्तस्ना की बहस भी करवा दूं क्योंकि बाज मदारिस में पढ़ाई जाती है, लेकिन ये पहले दर्जे वालों के से ऊंची है भाई, ये जरा बहस मुश्किल है, तवील है और पूरी मुफस्सल बहस है, इतनी लंबी और मुफस्सल बहस یہ اگلے سال ثانیہ کے طلبہ ہوں وہ تو کر سکتے ہیں، اولا والوں کے لیے یہ کرنا مشکل ہے بھائی، تو لہذا اس لیے پھر میں نے اس کو چھوڑ دیا بھائی. چلیے الحمدللہ ہماری کتاب مکمل ہو گئی بھائی، آپ سب کو بھی مبارک ہو، الحمدللہ اللہ نے توفیق دی کتاب مکمل کرنے کی. آئیے بھائی اب آخر میں دعا کر لیں بھائی. دعا کا طریقہ میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں، یاد رکھو جب بھی دعا کریں شروع میں الحمدللہ پڑھیں، کیونکہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، لہذا شروع میں الحمدللہ پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر درود شریف ہو 3 مرتبہ کم از کم، اور آخر میں بھی کم از کم 3 مرتبہ درود شریف بھی ہو اور آمین بھی ہو، اس سے دعا قبولیت کے قریب تر ہو جاتی ہے. تو دعا کے اول آخر میں درود ہو، کیونکہ درود جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے، درود کو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں. تو جب اول اور آخر میں درود ہے اس کو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، تو یقیناً اس کے میں جو دعا ہے جو وہ بھی اللہ ضرور قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ بات اللہ کی رحمت سے بعید ہے کہ اول اور آخر کو تو قبول فرما لیں اور درمیان کو قبول نہ فرمائیں. تو آئیے ہم سب بھی اسی طریقے سے دعا کر لیتے ہیں، شروع میں الحمدللہ پڑھ لیں اور پھر درود بھائی. الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اے اللہ ہماری اس مجلس، اس مبارک مجلس میں، اے اللہ جس میں ہم نے آپ کے دین کی ایک کتاب مکمل کی ہے، اے اللہ اس مجلس کی ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ جتنے حاضرین ہیں طلبہ ہیں اے اللہ سب کی تمام حاجتیں پوری فرما، اے اللہ ہماری تمام حاجتیں پوری فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ ہم سب کو ایمان والی قبر نصیب فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما، اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما، اے اللہ تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ ہماری تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ یہ طلباء، اے اللہ یقیناً یہ سب اس زمانے کے اندر علم دین کی تحصیل میں مشغول ہیں، اے اللہ یقیناً یہ آپ کے اولیاء ہیں، اے اللہ ان سب نے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، اے اللہ ہماری تمام حاجتیں پوری فرما، اے اللہ یہ ان کے گھروں میں کوئی پریشانی ہو تکلیف ہو، اے اللہ سب کے گھروں میں جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کے گھروں میں کوئی تکلیف ہو یا پریشانی ہو یا مشکل ہو، اے اللہ اس علم دین کی برکت سے وہ تمام پریشانیاں دور فرما، اے اللہ تمام مشکلات حل فرما، اے اللہ عافیت دارین ہمیں نصیب فرما، اے اللہ ہم نے عافیت دارین نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہم سب کو سنتیں پھیلانے والا بنا، اے اللہ شرک و بدعت اور گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما، شرک و بدعت اور گمراہیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا رحمان یا رحیم یا لطیف یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. حدیث میں آتا ہے جو شخص 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہہ دے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو اس کو پکار کر جواب دیتا ہے کہ اے مانگنے والے مانگ، ارحم الراحمین تمہاری طرف متوجہ ہیں. آپ سب بھی 3 مرتبہ کہہ لیجئے، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہماری اس مجلس کو مبارک مجالس میں سے فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو ان مجالس میں سے فرما، اے اللہ جس کے گرد آپ کے نیک فرشتے جمع ہوں. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نیک فرشتے نیک مجلسوں کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جہاں وہ نیکی کی مجلس کو دیکھتے ہیں اس کے ارد گرد وہ جمع ہو جاتے ہیں اور فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں اور اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں پہاڑوں کی صورت میں، یہاں تک کہ आसमान तक पहुंच जाते हैं। ए अल्लाह हमारी ये छोटी सी मजलिस है, ए अल्लाह हम आपके दीन सीखने सिखाने के लिए जमा हुए हैं, कोई दुनिया हमारा मकसद नहीं है। ए अल्लाह हमारी इस मजलिस को भी उन मजालिस में से फरमा कि जिसकी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहें। ए अल्लाह हमारी इस मजलिस को भी उन मजालिस में से फरमा कि जिसकी दुआओं पर फरिश्ते आमीन कहें। ए अल्लाह हमारी सबकी तमाम मुश्किलात हल फरमा, ए अल्लाह तमाम परेशानियां दूर फरमा, ए अल्लाह सबको वसी हलाल रिजक नसीब फरमा, ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को मुआफ फरमा, ए अल्लाह आपके दर के अलावा और कोई दर नहीं है, ए अल्लाह आपके दर के अलावा और कोई दर नहीं है। ए अल्लाह हमने आपके सामने हाथ फैलाए हुए हैं, ए अल्लाह अगर हम किसी मुआज़्ज़ज़ दुनियादार के दरवाजे पर भी इस तरह हाथ फैलाएं तो वो कभी हमें खाली हाथ नहीं लौटाएगा। ए अल्लाह आप तो अरहमुर रहीमीन हैं, ए अल्लाह आप तो अकरमुल अकरमीन हैं। ए अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा, ए अल्लाह हमारी तमाम हाजतें पूरी फरमा, ए अल्लाह हमारी तमाम मुश्किलात हल फरमा, ए अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा, ए अल्लाह हमें इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक दे, ए अल्लाह हमें सुन्नतों पर अमल करने वाला बना, ए अल्लाह हमें सुन्नतों को फैलाने वाला बना, ए अल्लाह शिर्क बिदात और गुमराहियों से हमारी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह क्यामत तक हमारी आने वाली नस्लों की भी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हमें सुन्नतें फैलाने वाला बना, ए अल्लाह हमें शिर्क बिदत और गुमराहियों को मिटाने वाला बना। ए अल्लाह, ए अल्लाह मेरे जितने तलामिजा हैं, ए अल्लाह सब की तमाम मुश्किलात हल फरमा, ए अल्लाह हर एक को दीन की खिदमत करने वाला बना, ए अल्लाह इनमें से हर एक को ऐसी शमा बना दे जिससे आगे मजीद लाखों शमे रोशन हों, ए अल्लाह इनमें से किसी भी तालिब इलम को जाया न फरमा, ए अल्लाह सबको दीन की खिदमत करने वाला बना, ए अल्लाह सबकी तकालीफ परेशानी और मुश्किलात दूर फरमा, ए अल्लाह मेरे तमाम तलाम मिजा को ए अल्लाह वसी हलाल रिजक नसीब फरमा, ए अल्लाह हराम के जर्रे जर्रे से हमारी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हम सबको वसी हलाल रिजक नसीब फरमा, ए अल्लाह हराम के जर्रे जर्रे से हमारी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह क्यामत तक हमारी आने वाली नस्लों को भी वसी हलाल रिजक नसीब फरमा, ए अल्लाह उनकी भी हराम के जर्रे जर्रे से उनकी हिफाजत फरमा, ए अल्लाह हम सबका खातिमा भी ईमान पर फरमा, ए अल्लाह क्यामत तक हमारी आने वाली नस्लों का खातिमा भी ईमान पर फरमा। ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह इन तलबा में से कोई बीमार हो, ए अल्लाह हाजरीन में से कोई बीमार हो, ए अल्लाह या उनके घरों में कोई बीमार हो, इस मुबारक मजलिस की बरकत से, इल्मे दीन की बरकत से सबको शिफा नसीब फरमा, ए अल्लाह सबको सेहत नसीब फरमा, ए अल्लाह सबको आफियत नसीब फरमा। ए अल्लाह हाजरीन में से किसी के वालिदैन जिंदा हों या उनमें से कोई एक जिंदा हो, ए अल्लाह सबको सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी नसीब फरमा, ए अल्लाह उनका साया तादेर हम सबके सरों पर कायम और दायम फरमा, ए अल्लाह आफियत नसीब फरमा, ए अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा, ए अल्लाह हमें अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा, ए अल्लाह हम सबको कबूलियत और मकबूलियत नसीब फरमा, ए अल्लाह हम सबको अल्लाह कबूलियत आमा नसीब फरमा, ए अल्लाह इन तलबा में से किसी को भी जाया ना फरमा, ए अल्लाह जाया ना फरमा, ए अल्लाह यकीनन आपने, ए अल्लाह आपने वादा किया है, ए अल्लाह हमारी सारी दुआएं कबूल फरमा, ए अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा, ए अल्लाह तमाम मुश्किलात हल फरमा। मेरे लिए भी आप हजरात से दुआओं की दरखास्त है, ए अल्लाह मुकम्मल सेहत और आफियत नसीब फरमा, ए अल्लाह तमाम मुश्किलात हल फरमा, ए अल्लाह तमाम मुश्किलात हल फरमा, ए अल्लाह तमाम मुश्किलात हल फरमा, ए अल्लाह ये दुरूस का जो सिलसिला जारी है, ए अल्लाह इसको तादेर सेहत और आफियत और उसके साथ तादेर कायम और दायम फरमा, ए अल्लाह इसको तादेर सेहत और आफियत के साथ जारी और सारी फरमा, ए अल्लाह इसको कबूलियत आमा नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे इस मदरसे के लिए भी दुआ करें, ए अल्लाह ये इसको हम सब के लिए सदका जारिया फरमा, ए अल्लाह ता क्यामत ये जारी और सारी रहे, ए अल्लाह इसको दीन की तमाम तहरीक मुल्कों का अजीम मरकज फरमा, ऐ अल्लाह हमारी ऐ अल्लाह इस टूटी फूटी काविश को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह हम आपके कमजोर बंदे, ऐ अल्लाह यकीनन हम में बहुत कोताहियां होंगी बहुत कमियां होंगी, लेकिन ऐ अल्लाह आपकी रहमत तो बड़ी वसी है, आपकी वसी रहमत का वासिता, ऐ अल्लाह हम सब की इस मेहनत को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह इस पौधे को ताकयामत अजीम अजीम खिदमात करने वाला बना, ऐ अल्लाह हर किस्म के दीनी अहले हक के लिए ताकयामत ये हमेशा मरकज रहे, ऐ अल्लाह पूरे आलम के अंदर ऐ अल्लाह इसको फैज फैलाने वाला बना, पूरे आलम के तहरीकों का इसको दीनी तहरीकों का इसको मरकज फरमा, ऐ अल्लाह हर किस्म की कोताहियों से ऐ अल्लाह और बिदात और गुमराहियों से ऐ अल्लाह और फितने और फसाद से इसकी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा, मुजाहिदीन के लिए भी खुसूसन दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह मुजाहिदीन इस जमाने के अंदर जो इस्लाम की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अल्लाह उनकी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह उनको हिम्मत और कुव्वत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह दुश्मनान इस्लाम को जलील और रुस्वा फरमा, ऐ अल्लाह इस मुसलमान इस जमाने में पूरे आलम के अंदर तकलीफों में है मुश्किलात में है, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को फिर उरूज नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हर जगह उन पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को फिर उरूज नसीब फरमा, ऐ अल्लाह मुसलमानों को फिर दीन की तरफ लौटा दे, ऐ अल्लाह हम सबको दीन पर चलने वाला बना दे, ऐ अल्लाह कुफार के दिलों में मुसलमानों की हैबत बिठा दे, ऐ अल्लाह तमाम आलम में मुसलमान जहां जहां तकलीफ में है परेशानियों में है मुसीबतों में है अल्लाह सबकी मदद फरमा, खास तौर पर ऐ अल्लाह कश्मीर में फलस्तीन में बर्मा में शाम में और इसी तरह चीन में हर जगह मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, खास तौर पर चीन के अंदर तो मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी गई, बाकी जगह की तो कुछ जुल्म की खबरें भी सुनने में आ जाती हैं, वहां तो कोई जुल्म वहां तो जुल्म की इंतहा है और कोई खबर भी नहीं आने दी जा रही, ऐ अल्लाह मुसलमानों को हिम्मत और कुव्वत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह दुश्मनान इस्लाम को जलील और रुस्वा फरमा, ऐ अल्लाह उनको तबाह बर्बाद फरमा, ऐ अल्लाह हमारे इस वतन की भी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह यहां पर भी जो साजिशों में मसरूफ हैं ऐ अल्लाह उनकी साजिशों को नाकाम फरमा, ऐ अल्लाह हमारे इस वतन में हमें इस्लामी निजाम नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा, ऐ अल्लाह तमाम मुश्किलात हल फरमा, ऐ अल्लाह इस मदरसे को ताकयामत दीन का अजीम मरकज फरमा, इसी तरह इस मदरसे में जो जो खिदमात सर अंजाम देने वाले हैं असातिजा हैं या और जो भी जिस अंदाज में भी मदरसे की खिदमत में मसरूफ हैं, ऐ अल्लाह सबको आफियत नसीब फरमा, ऐ अल्लाह सबको वसी हलाल रिजक नसीब फरमा, ऐ अल्लाह सबकी मुश्किलात हल फरमा, मेरी वालदा के लिए भी आप हजरात से दुआओं की दरखास्त है कि अल्लाह उनको सेहत और आफियत नसीब फरमाए, वो कुछ बीमार रहती हैं, दुआ करें अल्लाह उनका साया सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती के साथ तादेर हमारे सरों पर कायम और दाइम रखे, ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा, बड़े भाई मेरे मौलाना जुबैर रूहानी बाजिमुद्दा जिल्लुहु उनके लिए भी दुआ फरमाएं, ये दुरूस का सिलसिला ये असबाक का सिलसिला और ये मदरसे का ये सब उन्हीं की कोशिशों से चल रहा है, दुआ करें अल्लाह उनको भी सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती नसीब फरमा, ऐ अल्लाह उनका साया तादेर सेहत और आफियत और तंदुरुस्ती के साथ हमारे सरों पर कायम और दाएं फरमा, ऐ अल्लाह उनकी मुश्किलात हल फरमा, ऐ अल्लाह उनको आफियत दारैन नसीब फरमा, ऐ अल्लाह हमारी तमाम दुआएं कबूल फरमा, ऐ अल्लाह मेरे जितने तलामिजा हैं इनमें से एक को भी जाया न फरमा, ऐ अल्लाह इनमें से हर एक को ऐसा तालिब इल्म बना कि इससे आगे लाखों तलबा सीखने वाले हों और ताकयामत यह सिलसिला जारी रहे, ऐ अल्लाह इनमें से हर एक को दीन की अजीम खिदमात करने वाला बना, ऐ अल्लाह हम तो कमजोर हैं लेकिन ऐ अल्लाह आपकी रहमत तो बड़ी वसी है, ऐ अल्लाह हमें अपने दीन की खिदमत करने वालों में हमारा शुमार फरमा, ऐ अल्लाह बदबख्ती से हम सब की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह बदबख्ती से हम सब की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह बदबख्ती से हम सब की हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह अब हम میں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. بہت سے لوگ بھی دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں, اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں, سب کو جانتے ہیں, اے اللہ ان سب کی مشکلات حل فرما. بعض لوگ مقدموں کے سلسلے میں پریشان ہیں, بعض بیماری کے سلسلے میں پریشان ہیں, بعض اور مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, اے اللہ آپ تو سب جانتے ہیں جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما, اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما, اے اللہ مقدمات ان کے حق میں فرما, اے اللہ اور جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا, اے اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما, سب کی مشکلات حل فرما, اے اللہ ہم سب کو وسیع حلال رزق نصیب فرما, اے اللہ ہمیں اپنے دین پر چلنے والا بنا, اے اللہ دین کو پھیلانے والا بنا, اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا بول بالا فرما, اے اللہ ہماری نشست و برخاست میں دین کا بول بالا فرما, اے اللہ ہماری نسلوں میں بھی دین کا بول بالا فرما, اے اللہ ہم سب کی اصلاح فرما, اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما, اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما, اے اللہ جو بیمار ہوں ان کو صحت نصیب فرما, اے اللہ جو پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما, اے اللہ اس دروس کے سلسلے کو اے اللہ تا دیر اسی طرح صحت اور عافیت و تندرستی کے ساتھ اے اللہ جاری و ساری فرما, اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما, مشکلات سے حفاظت فرما, اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما. اب ایک دو منٹ تک ہر ایک کے دل میں جو جو حاجتیں ہوں, جو دعائیں ہوں, وہ اللہ سے مانگ لے. آمین آمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم.
صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. چلیے جی آپ سب کو بھی مبارک ہو گئے، مبارک ہو کتاب، الحمدللہ ختم ہو گئی.